ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशनों का विमोचन किया। राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कल से एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू होगा। नीति आयोग जल प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए कल से 15 दिन का जल उत्सव शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ करेंगे और लोक आस्था का पर्व छठ आज से शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज की ओर ले जाने के लिए न्याय प्रणाली को मजबूत करना होगा। राष्ट्रपति ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशनों का विमोचन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय मूल्यों और वास्तविकता पर आधारित विधि व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समानता और समान न्याय का आदर्श हमारी न्याय व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में सार्थक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोक अदालतें लगाना और जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करना न्याय प्रणाली की जमीनी वास्तविकताओं पर केंद्रित रहने के 2 उदाहरण हैं। राष्ट्रपति ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष की यात्रा की झलकियां, सुधार तथा मुकदमों में कमी लाने के लिए जेल नियमों की समीक्षा और विधि विद्यालयों के माध्यम से कानूनी सहायता तथा भारत में कानूनी सहायता प्रकोष्ठों की कार्यशैली पर रिपोर्ट का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जमीनी वास्तविकता का सही आकलन किए बगैर कानूनों और नीतियों का प्रभाव सीमित हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज जिन प्रकाशनों का विमोचन किया गया वे पारदर्शिता की परिचायक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत धम्म की पवित्र भूमि है और हर युग में यहां महान गुरु और रहस्यवादी हुए हैं। नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध का इन पथ प्रदर्शकों में अद्वितीय स्थान है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम का ज्ञान प्राप्त करना इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया कई मोर्चों पर अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, लेकिन बौद्ध समुदाय के पास मानव जाति को देने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया कि एशिया को मजबूत करने में बौद्ध धर्म की क्या भूमिका है और ये कैसे एशिया और दुनिया में वास्तविक शांति ला सकता है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का प्रमुख संदेश शांति और अहिंसा पर केंद्रित और इस बात पर प्रकाश डाला कि आज दुनिया को करुणा की आवश्यकता है। सांस्कृतिक मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से बौद्ध धर्म को सम्मानित करने के लिए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कल से एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर निगरानी के साथ उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिल्ली नगर निगम सहित विभिन्न एजेंसियों को तैनात किया गया है। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए श्री राय ने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए अगले 10 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज शाम 7 बजे 370 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2-3 दिन तक रात और सवेरे हल्की धुंध छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कुछ भागों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर चला गया है। आनंद विहार में सूचकांक 417, अशोक विहार में 400, बवाना में 413 और रोहिणी में 375 दर्ज किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज यमुना में फैल रही जहरीली झाग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। श्री राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश से आ रहे गंदे पानी के कारण कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना में झाग दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए लगातार यमुना की सफाई का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हजारों क्षेत्रों में छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि यमुना नदी की स्वच्छता बनाए रखी जा सके।
नहीं, यमुना में जो भी फॉर्म जो भी कालिंदी कुंज में उत्तर प्रदेश से गंदा पानी डाला जा रहा है उसकी सफाई का अभियान निरंतर चल रहा है। और उसके कालिंदी कुंज में ही नहीं, दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ पूजा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और धूमधाम से आज की शुरुआत हुई है।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार पर छठ श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया है। श्री यादव ने कहा कि यह बहुत बड़ी विडंबना है कि राजधानी दिल्ली में लाखों छठ श्रद्धालु इस महापर्व के दौरान यमुना के जहरीली पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नीति आयोग जल प्रबंधन संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए कल से 15 दिन का जल उत्सव शुरू करेगा। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार से प्रेरित है कि नदी उत्सव की तर्ज पर जल उत्सव भी मनाया जाना चाहिए। श्री मोदी ने पिछले वर्ष दिसंबर में तीसरे सचिव सम्मेलन में ये बात कही थी। नीति आयोग ने कहा है कि जल उत्सव 6 से 24 नवंबर के दौरान 20 महत्वाकांक्षी जिलों और विकास खंडों में मनाया जाएगा। ये आयोजन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। 20 राज्यों में चलाए जाने वाले इस अभियान में जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा में सामुदायिक सहभागिता पर बल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को शामिल किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्पाद बनाने में शामिल लोगों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए इन उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। उन्होंने दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेला 2024 के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। ये मेला 15 नवंबर तक चलेगा और सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहेगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मेले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम से जुड़े 16 राज्यों के 110 वंचित लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे न केवल वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
आज यहाँ पर ट्यूलिप नाम से नए ब्रांड का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे इन लाभार्थियों के द्वारा निर्मित सामग्री को इस ब्रांड के नाम से न केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको ई कॉमर्स के साथ में जोड़ते हुए विक्रय की सुविधा का लाभ हमारे लाभार्थियों को मिलेगा। आने वाले समय में हम इस तरह के शिल्प समागम मेलों को देश के अन्य अंचलों में भी लगा करके लाभार्थियों के साथ जोड़ते हुए उनको भी सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है वो आने वाले समय में और तीव्रता के साथ में इसको बढ़ाएगा।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा देश भर के 800 शहरों और जिलों में यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने के साथ साथ किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस क्रम में उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
उद्घाटन के बाद श्री जोशी ने कहा कि भारत ब्रांड चावल और आटा की बिक्री से किफायती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और बाजार में इन आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा। भारत ब्रांड आटा 30 रुपए प्रति किलोग्राम और भारत ब्रांड चावल 34 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध है। भारत ब्रांड के उत्पाद केंद्रीय भंडार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ से खरीदे जा सकते हैं। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत।
राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें संस्करण के दूसरे दिन आज केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा हस्तांतरण के लिए नई तकनीक विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विश्व सौर तकनीक और विश्व सौर निवेश जैसे विषय पर रिपोर्ट भी जारी की। इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना देश के लिए गर्व की बात है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज गोल मार्केट के मुख्य भवन को संग्रहालय के रूप में विकसित करने के कार्य की समीक्षा की। श्री सक्सेना ने बताया कि इमारत की मरम्मत का काम जोरों पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोल मार्केट भारत की समृद्ध विरासत और औपनिवेशिक युग के बाद से दिल्ली के विकास का एक प्रमाण है। उपराज्यपाल ने पुनर्विकसित और पुनर्स्थापित गोल मार्केट के अगले साल तक दिल्ली के लोगों के लिए खुल जाने की आशा व्यक्त की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हाथी परिवार की मूर्तियों का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने कहा कि ये मूर्तियां राजधानी के सौंदर्यीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज नए बस मार्ग 783 एक्सटेंशन से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नए मार्ग के अंतर्गत सभी बसें केंद्रीय सचिवालय से पालम स्थित दादा देव मंदिर तक कुल 23.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के अनुष्ठान की शुरुआत नहाए खाए व्रत के विधान से हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में लोग पर्व से जुड़े सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं।
महापर्व छठ के लिए दिल्ली के बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। राजधानी के पटेल नगर, गोल मार्केट, ओखला, सदर बाजार और चांदनी चौक में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु कपड़े, सूप, मिट्टी व कांसे के बर्तन, फल और पूजन सामग्री की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। धार्मिक रीतियों के अनुसार पर्व के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर का अर्घ देकर नहाए खाए का प्रसाद बनाया। छठव्रती ने मुख्यतः चावल, चना का दाल, कद्दू की सब्जी का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। छठ महापर्व के दूसरे दिन श्रद्धालु खरना का व्रत रखेंगे। छठव्रती गुड़ या ईख के रस से तैयार खीर और रोटी का भोग लगाकर खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला निराहार उपवास शुरू हो जाएगा। छठ महापर्व के तीसरे दिन श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। प्रसाद के रूप में ठेकवा, चावल का लड्डू, ईख और अन्य सभी मौसमी फल भगवान सूर्य को अर्पित किए जाते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के नहाए खाए के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि छठी मैया की कृपा से पर्व के सभी अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। रेलवे त्योहारों के दौरान आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से देश के विभिन्न भागों के लिए 25 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेलवे द्वारा छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए इस महीने की 8 तारीख तक 145 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है और प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों की यात्रा सुगम बनाई जा रही है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर रेलवे सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग पर रेलगाड़ियों का संचालन भी कर रहा है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम हल्की धुंध के साथ सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि सवेरे और रात के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मनाई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशनों का विमोचन किया। राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कल से एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू होगा। नीति आयोग जल प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए कल से 15 दिन का जल उत्सव शुरू करेगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे और लोक आस्था का पर्व छठ आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।